है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यहुन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मेरा सखी तू है दाता। प्रिय मित्र, प्रभु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय मित्र और परिवार के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है। मेरे मित्रों, पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि महाक्लेश में स्वर्गदूत सुसमाचार का प्रचार करेंगे और फिर एक स्वर्गदूत घोषणा करेगा कि बेबीलोन का पतन हो गया है। तब एक और स्वर्गदूत प्रकट होता है जो चेतावनी देता है कि पशु का चिन्ह लगाने वाले को परमेश्वर के प्रकोप का कटोरा पीना होगा। इसके बाद एक और स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा कि वह लिख ले, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। अब वह देखता है कि प्रभु यीशु संसार की लवनी करने के लिए आ गया है। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबों को दिया है ताकि हम फिर से बार आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय अलग अलग स्थानों पर रेडियो के निकट बैठे हैं, आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जो कुछ भी आज हम अध्ययन करते हैं वे समझ सकें, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से, शैतान के छल प्रपंच से आप उनकी रक्षा करें, अपने ज्ञान में बढ़ाएं ताकि वे सत्यता को जानें और आपको महिमा दें। आज के अध्ययन पर भी अपनी आशीष दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय उसके 14 पद को देखेंगे जिसका शीर्षक है हर्मगिदोन का पूर्व प्रदर्शन। आइए आप मेरे साथ पढ़ें प्रकाशित वाक्य 14 उसका 14 पद। मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। लिखा है मैंने दृष्टि की और देखा। इससे स्पष्ट होता है कि यूहन्ना सुन रहा था और साथ ही साथ दृश्य भी देख रहा था। लिखा है एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है। यह प्रभु यीशु ही है। बादल एक पहचान का चिन्ह है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 30 पद में प्रभु यीशु मसीह कहता है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। मेरे विचार में यह बादल शकीना महिमा का बादल है जो स्वर्ग में चिन्ह होगा। तब आगे लिखा है जिसके सिर पर सोने का मुकुट है। यह पुष्टि करता है कि प्रभु यीशु ही है। वह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का नायक है। मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं कि वह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का नायक है और उसका वास्तविक चित्रण देखने के लिए आपको इस पुस्तक की आवश्यकता है। यहां वह भविष्यद्वक्ता या याजक नहीं, एक राजा है। उसका राजा होना सदा ही उसके पृथ्वी पर पुनः आगमन से संबंधित है। लिखा है उसके हाथ में चोखा हंसुआ है। चोखा हंसुआ यह दुष्ट के दंड की पुष्टि को करता है। डॉक्टर न्यूवेल एक बड़ी रोचक बात कहते हैं, धर्मशास्त्र में हंसुआ शब्द कुल 12 बार आया है। जिसमें से 7 बार यह शब्द इन पदों में उपयोग किया गया है और चौथा शब्द प्रकाशित वाक्य में 7 बार आता है, जिसमें से 4 बार इसी अध्याय में प्रयोग किया गया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 उसके 15 और 16 पद में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की। लिखा है, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, इसका अर्थ है पृथ्वी पर मनुष्य को दंड देना। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 40 से 42 पद में प्रभु यीशु कहता है, अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और सब कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। मत्ती रचित सुसमाचार में यहां तक फसल को मसीही जनों की गवाही के प्रतीत स्वरूप दिखाते हैं, या यूं कहें कि हमें फसल को मसीह जनों की गवाही के प्रति प्रयोग में लाया गया है और विश्वासियों से आग्रह किया गया है कि वे फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें, भेजने के लिए प्रार्थना करें। इसका अर्थ है कि धर्मशास्त्र के इस संदर्भ में एक साधारण विश्वासी इस काम के योग्य नहीं है। सच बात तो यह है कि आज विश्वासियों को फसल नहीं काटना है, उन्हें परमेश्वर के वचन का बीज बोना है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 3 पद में एक बीज बोने वाला निकला, जो मसीही समाज का चित्रण है। प्रभु यीशु मनुष्य का पुत्र है, वह बीज बोने वाला है और परमेश्वर का वचन बीज है और भूमि यह संसार है। वह इस संसार में बीज विसर्जित कर रहा है। एक दिन यह फसल तैयार हो जाएगी, परंतु वह समय का अंत होगा। आप और मैं आज फसल काटने के काम में नहीं है, हमारा काम है बीज बोना, परमेश्वर के वचन का बीज बोना। यही कारण है कि मैं परिणाम की चिंता नहीं करता हूँ, मैं स्रोत के बारे में बहुत चिंतित रहता हूँ। मैं परमेश्वर के वचन के प्रसारण में अपना सर्वोत्तम ध्यान लगाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि बीज बोना मेरा काम है। आप तक परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है या मेरा काम है? मुझे उन लोगों की संख्या की चिंता नहीं जो कहते हैं कि मेरी सेवा के परिणाम स्वरूप वे प्रभु यीशु में विश्वास लाए हैं। मैं केवल बीज बोता हूं, प्रभु यीशु मसीह फसल काटेगा। फसल काटना अंत समय में दंड देना है। यहां प्रकाशित वाक्य में हमारे सामने यह परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है। मेरे प्रियो, पुराने नियम में आपने देखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह को पुत्र के दिए जाने के बारे में कहा गया है, अर्थात पुराने नियम में अपने पुत्र को दिए गए परमेश्वर के निर्देश को हम सुनते हैं। भजन संहिता 2 अध्याय उसके 7-9 में लिखा है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। क्या प्रभु यीशु के प्रथम आगमन पर ऐसा कुछ हुआ था? जी नहीं। तब यह कब होगा? यह पृथ्वी पर प्रभु यीशु के पुनः आगमन के समय होगा, जिसे हम उसका दूसरा आगमन कहते हैं। उस समय वह दंड देने के लिए आएगा। यहां पर लिखा है, क्योंकि लौने का समय आ पहुंचा है। यह प्रभु यीशु के शब्दों की अनुरूपता में है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 39 पद में लिखा है, कटनी जगत का अंत है, लौने का समय आने वाला है, इसलिए हम बीज बोना ना छोड़ें और लोगों के हाथ उठाने और प्रभु यीशु को ग्रहण करने वालों के आगे आने में आप रुचि न रखें। हम सुनिश्चित करें कि हम परमेश्वर के वचन का प्रसारण करते जाएं। परमेश्वर का आत्मा परिणाम की सुधि लेगा। फसल के काटे जाने का समय पुराने नियम में व्यक्त किया गया है, जिसे हम यूएल नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 13 और 14 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, हसुआ लगाओ क्योंकि खेत पक गया है, आओ दाख रौंदे क्योंकि हौज भर गया है, रसकुंड उमड़ने लगे क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है, निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। ये सारी बातें हमें पहले से बताई गई हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय के 17 और 18 पद में आगे लिखा हुआ है, फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चोखा हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला और जिसके पास चोखा हंसुआ था, उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। मेरे मित्रों, यहां पर लिखा है उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है। यह कलीसिया से नहीं पुराने नियम से संबंधित है। लिखा है चोखा हंसिया अर्थात दंड, उसकी दाख पक चुकी है। यह ऐसा है जैसे वे सूख कर किसमिस हो गए हैं। यह हर्मगिदोन के युद्ध के रूपक में परिवर्तन है। यशाया यही परिदृश्य प्रदान करता है, यशाया नबी की पुस्तक 63 अध्याय उसके 1 से 6 पद में। यह कौन है जो एदोम देश के बोस्रा नगर से बैजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है? यह मैं ही हूं जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूं। तेरा पहरावा क्यों लाल है? क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद के दाख रौंदने वाले के समान है? मैंने तो अकेले ही हौद में दाख रौंदी है और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हां, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं, इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है। क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। मैंने खोजा पर कोई सहायक न दिखाई पड़ा। मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा। अपनी जलजलाहट से मैंने उन्हें मतवाला कर दिया और उनके लहू को भूमि पर बहा दिया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। यह सजीव चित्रण प्रभु यीशु के प्रथम आगमन का नहीं है। यह उस समय का वर्णन है जब प्रभु यीशु पुनः पृथ्वी पर आएगा और दुष्टों को दंड देगा। यशाया के युग में अंगूर रौंदने के लिए कुंड में नंगे पांव उतारा जाता था ताकि लोग वहां पर उसे रौंदे, और अंगूर का रस जो लाल रंग का होता था उनके कपड़ों पर दाग लगा देता था। इस पद में दर्शक देख रहे हैं कि प्रभु यीशु के सुंदर वस्त्रों पर लहू के दाग ऐसे हैं जैसे वह दाख रौंद कर आ रहा है। पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था तब उसने मानव जाति के लिए अपना लहू बहाया था, परंतु उन्होंने उसे स्वीकार न किया। अब वह दुष्ट को रौंद रहा है और यह उनका लहू है जो बह रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय उसके 16 पद में हम देखेंगे कि वह उन्हें एकत्र करेगा, और उन्होंने उसको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर्मगिदोन कहलाता है। यह युद्ध नहीं, महायुद्ध है, हर्मगिदोन का युद्ध। जी हां, यशाया की भविष्यवाणी से इस अंश में हम देखें कि वह अकेला ही दाखरस के कुंड में दाख रौंद रहा है। यह निश्चित रूप से भयानक दृश्य है। अतः इसमें आश्चर्य की बात नहीं कि पृथ्वी पर मनुष्य चट्टानों को पुकारेगा कि उन पर गिर पड़े, उन्हें मेमने के क्रोध से छिपा ले। यह उस सभ्यता का दुखद अंत होगा जिसने बाबुल का गुम्बद बनाकर परमेश्वर से सक्रिय विरोध प्रकट किया था, जो उस समय से ही अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है और महाक्लेश में अपनी संपूर्ण उग्रता में होगा। मेरे प्रियो, अध्याय 19 में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु आकर परमेश्वर के विरुद्ध उठे विद्रोह का दमन करेगा कि इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करे। भजन संहिता 2 की भाषा के अनुसार उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा और कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। मेरे प्रियो, यह प्रभु यीशु वह विनम्र यीशु नहीं होगा जिसे हमने परमेश्वर के वचन में देखा है। प्रभु यीशु इस संसार का उद्धार करता है, परंतु इसके साथ ही वह इस संसार का न्यायकर्ता भी है। यदि आप उसके उस लहू को ग्रहण न करें जो उसने आपके लिए कलवरी क्रूस पर बहाया है, तो यदि महाक्लेश आपके जीवन काल में आ जाए तो आपका लहू बहाया जाएगा। मेरे विचार में परमेश्वर के वचन का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने वाले जिनमें थोड़ी बहुत भी समझ है कभी नहीं कहेंगे कि कलीसिया महाक्लेश के भयानक युग में रहेगी। वे जो कलीसिया को महाक्लेश की पीड़ा में धकेलना चाहते हैं, वे महाक्लेश को दांत उखाड़ने वाले का दर्द सा समझते हैं, परंतु यह दर्द सहनीय है। मेरे प्रियो, आपने महाक्लेश को देखा नहीं है कि वह वास्तव में कैसा होगा। यशाया हमें इसका दूसरा चित्रण भी दिखाता है। यशाया नबी की पुस्तक 34 अध्याय उसके 1-3 पद और 6 पद में लिखा है, हे जाति जाति के लोगों, सुनने के लिए निकट आओ, और हे राज्य राज्य के लोगों, ध्यान से सुनो। पृथ्वी भी और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है, सब सुनो। यहोवा सब जातियों पर क्रोध कर रहा है और उनकी सारी सेना पर उसकी जलजलाहट भड़की हुई है। उसने उनका सत्यानाश होने और संहार होने को छोड़ दिया है। उनके मारे हुए फेंक दिए जाएंगे और उनके शवों की दुर्गंध उठेगी। उनके लहू से पहाड़ गल जाएंगे। यहोवा की तलवार लहू से भर गई है। वह चर्बी से और भेड़ों के बच्चों और बकरा के लहू से और मेढ़ों के गुर्दों की चर्बी से तृप्त हुई है, क्योंकि बोसरा नगर में यहोवा का एक यज्ञ और एदोम देश में बड़ा संहार हुआ है। मेरे श्रोता मित्रों, यह कैसा परिदृश्य है। मेमने का अनमोल लहू तुच्छ समझा गया तो परमेश्वर को चुनौती देकर पशु की पूजा करने वालों का लहू पृथ्वी को रंगता है। यह एक भयानक दृश्य है। जिस प्रकार पका हुआ अंगूर कुचलते समय छींटे उड़ाता है, उसी प्रकार अदना मनुष्य परमेश्वर के दंड के कुंड में रौंदा जाएगा। यह हर्मगिदोन अर्थात नरसंहार का पर्वत है। मेरे प्रियो, क्या आपको इसे सुनकर डर नहीं लगता है? क्या आप चाहते हैं कि आप उस महाक्लेश में होकर के जाएं या परमेश्वर के लहू के द्वारा बचाए जाएं? यदि हाँ, तो आज भी आपके पास मौका है कि अपने मनों को अपने पापों से फिराकर प्रभु यीशु की ओर लौट आएं, क्योंकि वह आपके जीवन को चाहता है, बचाना चाहता है। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आप एक सही निर्णय लेंगे और अपने जीवन में प्रभु को आने देंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 22600001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
खुदावन खुदा वो देखो वो आ गया, वो खुदावन खुदा वो देखो वो आ गया। हर रोग की हर मर्ज की दीनी शफा आ गया, जख्मों को है मरहम मिला, मसीहा बन के आया मेरा खुदा। वो खुदा बन खुदा वो देखो वो आ गया। जख्मों को है मरहम मिला, मसीहा बन के आया मेरा खुदा। वो खुदा बन खुदा वो देखो वो आ गया। मरहम मिला, मसीहा बन के आया मेरा।